जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jai Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nita Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Acharya Stotra Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokula Nanda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru, Shri Yuta Padakamalam, Shri Gurun Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadhutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurundinatarinam Vancha kalpataro bhyascha kripasindho bhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha namo mahavadanyaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namne gauratvishe namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhaktashaktikam Aradhya Bhagavan Vrajeshatanayas Taddhama Vrindavanam Ramyakachidupasana Vrajavadhu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumartho Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhor Matamidam Tatra Darahana Paraha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna तो सन 2011 के गौर कथा में आप सबका स्वागत है। आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि अभी हम वहीं से कथा आज प्रारंभ करेंगे जहां 8 साल पहले हम रुके थे। 2003 गौर पूर्णिमा में जहां कथा को विराम दिया था, आज वहीं से कथा आगे बढ़ाएंगे। वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत हैं क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। भगवान की लीलाओं को सुनने से ऐसे प्रतीत होता है कि हम अमृत का पान ही कर रहे हैं। वास्तव में ये सच्चा अमृत होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, इन सब का वर्णन है। साथ साथ भगवान के अन्य अवतारों का भी वर्णन है। और श्रीमद् भागवत के बारे में बताया जाता है कि जब सुखदेव गोस्वामी इस भागवत की कथा को करने वाले थे राजा परीक्षित को, तो खबर सारे ब्रह्मांड भर में फैल गई और ब्रह्मांड के कोने कोने से भी देवतागण आदि आने लगे। पृथ्वी लोक के 9 सप्तद्वीपों में से तो आ ही रहे थे और जम्बूद्वीप के 9 खंडों से आए और सारे ब्रह्मांड से सब आने लगे। और देवतागण आए सुखदेव जी के पास और कहने लगे कि हम आपको स्वर्ग लोक का अमृत देंगे, तो आप ही हमें भागवत का अमृत इसके बदले में दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने मना किया क्योंकि ये भागवत के प्रति एक अपराध है। क्यों अपराध है? क्योंकि भागवत की तुलना स्वर्गलोक के अमृत से करना ये अपराध है। स्वर्गलोक का जो अमृत है वो क्या कर सकता है? हाँ, हमें बहुत दीर्घ आयु प्रदान कर सकता है। पृथ्वी लोक में हमारी जीवन की अवधि बहुत कम है, अधिक से अधिक 100 साल तक कलयुग में। हाँ, द्वापर युग में 1000, त्रेता युग में 10,000, सतयुग में 1,00,000 ऐसी आयु हुआ करती थी। फिर भी इसकी तुलना में देखा जाए तो स्वर्ग लोक के जो निवासी है उनकी जो जीवन की अवधि है वो पृथ्वी के समय के तुलना से देखा जाए तो बहुत लंबा है, लाखों लाखों साल। बल्कि ऐसे बताया जाता है कि यहाँ का एक महीना जो है वो वहाँ के 12 घंटे हैं, तो वहाँ के 24 घंटे यहाँ का एक पूरा साल। तो कल्पना कीजिए यहाँ के 1,00,000 साल फिर कितने हो जाते हैं उनके लिए, और वो हजारों हजारों साल तक जीते हैं। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर कहा जाता है, परंतु अमर केवल कहने के लिए, वास्तव में वो तो अमर नहीं है। अमर इसलिए कहा जाता है उनको कि पृथ्वी लोक की तुलना से उनके जीवन की अवधि इतनी लंबी है कि प्राय अमर है हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो, परंतु वास्तव में वो तो है अमर नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति स्वर्गलोक का अमृत का पान करता है तो देवताओं की तरह उसकी दीर्घ आयु हो सकती है। तो देवलोक के निवासी आके सुखदेव जी से आदि कह रहे थे कि ये आप भागवत का अमृत हमें दीजिए और आपको इस स्वर्गलोक का अमृत हम देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी का मत था कि भागवत का अमृत दिव्य अमृत है, सच्चा अमृत है। अमृत क्या चीज है? अमृत, जो हमको मृत अवस्था से पार कर सकता है, जो हमको अमर बना सकता है। अमर, जो मरता नहीं है वो अमर। तो ये हमको भगवान के धाम में ले जा सकता है, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। परंतु देवलोक का जो अमृत है ये तो भौतिक है, केवल दीर्घ आयु प्रदान कर सकता है, हमें आध्यात्मिक शरीर नहीं प्रदान कर सकता, हमें कृष्ण भक्ति का आनंद नहीं प्रदान कर सकता, कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान कर सकता। तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति के सामने ये दुनिया का अमृत क्या चीज है? कुछ नहीं है। बल्कि भगवान के भक्ति और भगवान के भक्ति से जो लाभ होता है उसकी तुलना किसी भी भौतिक चीज से करना ये एक अपराध है। यहाँ तक कि भगवान के नाम के जप को यदि हम कर्म कांड भी मान लें तो ये भी एक नाम अपराध है, और ऐसे करेंगे तो हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा भगवान के नाम के कीर्तन और जप का। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने मना किया कि ये अमृत जो है ये विशेष अमृत है, इसे केवल योग्य व्यक्ति पान कर सकते हैं, ऐसे ही कोई व्यक्ति इसका पान नहीं कर सकेगा। तो हर चीज के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के और भगवान के लीलाओं के कथा का अमृत पान करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें श्रद्धा चाहिए, कथा सुनने की आतुरता चाहिए, और फिर जब हम भक्तों के संग में आके भगवान की कथाएं सुनते हैं तो वास्तव में फिर अमृत तुल्य लगती हैं। और अमृत तुल्य ही नहीं, वास्तव में अमृत है, क्योंकि ऐसे पान करके भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो सकती है। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पौरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं कुछ कथा जो कि परम पुरुष हैं, तो भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति जागृत हो जाता है, जिससे कि शोक मोह भय सब दूर चले जाते हैं। तो ये भागवत के कथा का पान या भगवान की कथाओं का पान करने का लाभ है। ये कानों से पान किया जाता है, बाकी जो देवताओं का अमृत है वो मुख से पिया जाता है, लेकिन मुख से पिए जाने वाले अमृत का ज्यादा मूल्य नहीं है। लेकिन सो कान से पिए जाने वाला जो अमृत है, भगवान की कथा है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। तो वही श्री कृष्ण वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में तो प्रकट हुए थे 5000 वर्ष पूर्व, परंतु उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये कृष्ण प्रेम बहुत आसानी से सभी को देना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो युग है वो कलयुग है, और कलयुग में लोगों की बुद्धि कम होती है, आयु भी बहुत कम होती है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता है। कलयुग के लक्षण ऐसे हैं कि सभी लोग मंद बुद्धि के होते हैं, दुर्भाग्यशाली होते हैं, हमेशा विचलित रहते हैं, उनकी आयु बहुत कम रहती है, अल्पायुष के रहते हैं। तो ऐसे अवस्था में जब लोगों को भगवान की ओर रुचि रहेगी ही नहीं, तो हमें आकर इतना आसान बनाना होगा कृष्ण प्रेम कि उनको बिना कोई योग्यता के, बिना कोई प्रयास किए हुए भी उनको कृष्ण प्रेम मिल जाना चाहिए। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने के कई कारण हैं, उनमें से ये एक कारण है कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जिस प्रेम का आस्वादन उन्होंने वृंदावन में किया, आके वृंदावन की लीला उन्होंने प्रकट की, वो उन्हीं लीलाओं का रस हम सबको दिलाना चाहते थे इस कलयुग में, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जो व्यक्ति वृंदावन के राधा कृष्ण को अच्छी तरह से जानना चाहता है, समझना चाहता है, जो इन लीलाओं में प्रविष्ट होना चाहते हैं और इनमें प्रविष्ट होकर फिर भगवान के धाम में नित्य रूप से उनके संग में रहना चाहते हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनना आवश्यक है। बल्कि इस कलयुग में राधा कृष्ण की ओर जाने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु के सिवाय, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के एक मिलित रूप हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, उन्होंने अपना मिलित रूप रामानंद राय को दिखाया था जब दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो संवाद हुआ उनका रामानंद राय के साथ, बहुत प्रसिद्ध संवाद है, इसको राय रामानंद संवाद कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव में बहुत प्रसिद्ध है ये। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को अपना राधा कृष्ण रूप दिखाया। वैसे राधा रानी और कृष्ण वो भिन्न नहीं है, एक ही है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्माद एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि राधा कृष्ण की जो प्रेममयी लीलाएं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा आध्यात्मिक लादिनी शक्ति के स्वरूप के रूप हैं। और वैसे राधा और कृष्ण एक हैं, एकात्मानव एक आत्मनो, राधा और कृष्ण एक हैं। अपि फिर भी भुवा भुवि मतलब इस धरातल पे वो प्रकट हुए दो रूप में, राधा और कृष्ण, यद्यपि वो एक हैं। देह भेदम गतौ तौ, यद्यपि राधा और कृष्ण एक ही हैं, उन्होंने देह भेद स्वीकार किया और राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, केवल लीलाओं का आनंद का भोग करने के लिए, आध्यात्मिक लीलाएं। तो जब राधा और कृष्ण की लीलाएं होती हैं, कई लोग जो अज्ञानी होते हैं निंदा करते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि राधा और कृष्ण एक हैं, एक आत्मनो, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति हैं, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। तो वही एक परम सत्य अब राधा रानी और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, और अब चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम् च ऐक्यम आप्यम, और वही दो पहले एक से दो हुए, अब वही दो अब फिर से एक हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा कृष्ण है। राधा भाव द्युति, राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी वृंदावन के रस का आस्वादन करने के लिए सारी लीलाएं प्रकट कर ली। वैसे वृंदावन में श्री कृष्ण ने कृष्ण के रूप में लीला का स्वाद लिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव का आनंद ले रहे हैं। और वो इस बात को साबित करना चाह रहे हैं कि भक्त का आनंद जो है भगवान के आनंद से श्रेष्ठ होता है। जब भगवान और भक्त के बीच में भक्ति का संबंध होता है उसमें दोनों को परम आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु भक्त को अधिक आनंद होता है। और इस रहस्य को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, इसलिए चैतन्य लीला की का ये महत्व है। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए मनुष्य समाज में, तो एक साधारण मनुष्य की तरह उनका रहन सहन रहा। हाँ, कृष्ण की भी लीलाएं वृंदावन में ऐसी ही थीं, परंतु देखा जाए तो उनका उनके शरीर का रंग नीला था। अब नीले रंग का कोई आदमी तो हम देखते नहीं है ना यहाँ। आप ऐसे किसी आदमी को पहचानते हैं जिसका रंग नीला है? तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु साधारण व्यक्ति के रह दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे ब्राह्मण परिवार के में उनका जन्म हुआ, एक पंडित थे, पाठशाला में पढ़ाया करते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। हाँ, अद्भुत विद्या थी उनकी, विद्वत्ता थी, परंतु दिखने में एक मनुष्य जैसे ही दिखते थे, इसलिए उनकी लीलाएं और भी मधुर मानी जाती हैं। जितनी ज्यादा मानवीय लीला होती है, मतलब मनुष्य की तरह उनकी लीलाएं होती हैं भगवान की, उतनी ज्यादा मधुर हो जाती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत में पाया जाता है, वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में पाया जाता है, और लोचन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल में पाया जाता है, मुरारी गुप्त के चैतन्य चरित महाकाव्य में पाया जाता है, और ऐसे कई ग्रंथ हैं, लेकिन ये प्रमुख ग्रंथ हैं। तो हम चैतन्य भागवत से कथा का वर्णन करते आए हैं, और 2003 में कथा यहाँ पर विराम हो चुकी थी कि चैतन्य महाप्रभु ने अब अपने भक्ति की लीलाओं को प्रकट किया था। आपको याद होगा या आपको पता है कि जब पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे वृंदावन नवद्वीप में, तो उन्होंने विद्या रस का आस्वादन किया। एक शुष्क व्याकरण आदि के विद्वान की भूमिका उन्होंने निभाई, और सब जगह जाके लोगों को तर्क, लोगों के साथ तर्क करते थे, वाद करते थे, और उनको पूरी तरह से हरा डालते थे। वाद में कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। पकड़ पकड़ के लोगों से वाद करते थे, उनको चुनौती देते थे, मेरे साथ वाद करो। और बड़े बड़े भट्टाचार्य, उपाध्याय, मिश्र आदि जो बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण नवद्वीप में रहा करते थे, वो सब घबराने लगे इस तरुण से, जो बल्कि एक बालक के समान थे उनके सामने। ये सब बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान थे, और उनके सामने निमाई पंडित तो एक बच्चे जैसे थे, परंतु जब निमाई पंडित बात करना शुरू करते तो ये सारे चकाचौंध रह जाते। ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि, आश्चर्यजनक, उन्होंने कल्पना नहीं की कि ऐसे किसी मनुष्य के अंदर हो सकती है। वो वैष्णवों को भी चुनौती देते कि आओ मेरे साथ बात करो, और वैष्णव, आप तो जानते हैं, आप सब वैष्णव ही हैं, आप समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, किसी से फिजूल की बातें, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहते हैं। और कोई आके कहे हमसे तर्क करो, तो हम तर्क करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, समय बर्बाद हो जाता है। वैष्णव अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही मूल्यवान होता है, तो हमें मनुष्य जीवन का ये मूल्यवान समय व्यर्थ तर्कवाद करने में क्यों बिगाड़ना चाहिए। तो इसलिए जो वैष्णव थोड़े बहुत थे उस समय नवद्वीप में, बहुत कम थे, वो सब निमाय पंडित से दूर ही रहते थे। फिर भी निमाय पंडित इतने आकर्षक थे, दूर रह भी नहीं सकते थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु इन सब से कहा कि हाँ मुकुंद, मुझे पता है तुम मुझसे क्यों भाग के जा रहे हो, क्योंकि तुम लोग वैष्णव हो और समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो तर्क में। लेकिन देखना, एक दिन मैं ऐसे वैष्णव बनूंगा कि तुम सबको दिखा के रहूंगा कि कैसे वैष्णव बनूंगा, देखो तो सही तुम। और वास्तव में अपने शब्दों को सार्थक करके ही दिखाया निमाय पंडित ने बाद में चल के। और ये परिवर्तन तब हुआ जब वो अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के श्राद्ध के निमित्त पर गए थे, और वहाँ पे ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली। अब चैतन्य महाप्रभु को अपने पिता के श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? श्राद्ध क्यों किया जाता है? जो श्रद्धा से किया जाता है वो श्राद्ध है। और किसके लिए किया जाता है? पुन्नाम त्रायते नरकात इति पुत्र है। जो अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को नरक लोक आदि से मुक्त कर सकता है वो पुत्र कहलाता है। तो उसको श्राद्ध करना चाहिए अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। लेकिन जगन्नाथ मिश्र ये तो स्वयं भगवान के पिता बन के आए, तो ये तो बद्धजीव नहीं है, उनको तो कोई श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। वो तो भगवान के धाम से आए, भगवान के नित्य पार्षद हैं, और भगवान के पास पुनः चले जाएंगे और उनकी लीला में शामिल होंगे जगह जगह। भगवान की बात तो दूर है, वास्तव में देखा जाए तो एक वैष्णव को भी श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब गृहस्थ आश्रम में होते हैं वैष्णव ऐसा कर लेते हैं समाज के लिए एक उदाहरण रखने के लिए, परंतु आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैष्णव से संबंधित होने पर भी उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। और नहीं वैष्णव अपने वंशजों के ऊपर निर्भर रहते हैं कि वो हमारे लिए श्राद्ध करें, क्योंकि वैष्णव अपने भक्ति के ऊपर ही निर्भर रहता है, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहता है। तो किसी वैष्णव के कोई बच्चे भी नहीं हो कोई बात नहीं, भगवान उनके बच्चे बन के आएंगे, उनका उद्धार कर देंगे। फिर भी एक लीला है, और कोई निमित्त चाहते थे निमाय पंडित अपनी भक्ति रस की लीलाओं का आरंभ करने के लिए, विद्या रस से भक्ति रस। तो गए ईश्वरपुरी, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली, और उस क्षण से निमाय पंडित का ऐसे परिवर्तन हो गया कि कोई देखने वाला उनको पहचान नहीं सका। उनके साथ में जो उनके छात्र गए थे विद्यार्थी, वो भी समझ नहीं पाए कि निमाय पंडित जी का ऐसे परिवर्तन कैसे हो गया। पहले जाते जाते तो वो सब व्याकरण न्याय आदि की बातें करते, अब जब दीक्षा लेने के बाद गया से नवद्वीप की ओर लौट के आ रहे थे तो ऐसे प्रेमावेश में थे, केवल कृष्ण कृष्ण कहते हुए चल रहे थे, और जब नवद्वीप लौटे तो ऐसा स्वरूप निमाय पंडित का वैष्णव ने देखा तो वो भी विस्मित रह गए कि ये क्या हो गया। बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कैसे ये परिवर्तन अचानक हो गया? ये तो ऐसे प्रेम में कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण के विरह में कहाँ है कृष्ण, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कह रहे हैं, और ऐसे प्रेम के लक्षण वो प्रकट कर रहे थे जो कि नवद्वीप के वैष्णवों ने कभी देखा नहीं था। और एक के बाद एक ये प्रेम के लक्षण और भी गहरे होते गए और भी तीव्र होते गए, और चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित के नाम से उस समय जाने जाते थे, उनके लक्षण ऐसे हुए कि सारे भक्त सोचने लगे कि किसी मनुष्य के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देना ये तो हमारे कल्पना के बिल्कुल बाहर है। ये तो कौन है पता नहीं। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के रस का आस्वादन करना शुरू कर दिया और ऐसे कई लीलाएं हुई जिनके वर्णन हम सुन चुके हैं। और ऐसे करते करते फिर पुंडरीक विद्यानिधि, जो चैतन्य महाप्रभु के निकट के भक्त हैं, पार्षद हैं, वो वहां आए। और फिर एक दिन निमाय पंडित ने घोषणा की कि हे मेरे मित्रों, यहाँ आइए, अब देखिए ये मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। हम रात को सोते हैं, कितना समय बिगड़ जाता है, तो क्यों ना हम रात को भी संकीर्तन करें, जिससे कि सारा जगत पावन हो जाए और हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, कृष्ण प्रेम हमें भी प्राप्त हो। वही कृष्ण नाम जो हमारा प्राण धन है, चलिए उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जितने भी वैष्णव वहां उपस्थित थे वो बड़े हर्षित हो गए, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, रात को हम वैसे भी सोते हैं तो केवल सोने से मनुष्य जीवन थोड़ी सफल हो जाएगा, सोना तो सभी लोग करते हैं, तो चलो हम सब कीर्तन करते हैं। तो वहां भक्तों की संख्या बहुत बड़ी थी। अब चैतन्य महाप्रभु के साथी जो हैं वो बढ़ गए थे। चैतन्य महाप्रभु तो हैं भगवान, सर्वाकर्षक हैं, तो अनेक वैष्णव आ गए उनके पास और अनेक लोग वैष्णव बन गए। तो वहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद, हरिदास, अद्वैत, श्रीवास, बुद्धिमंत खान, ऐसे कितने सारे भक्त थे जिनकी गणना नहीं की जा सकती, और सब बड़े आतुरता से रात के संकीर्तन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। और वो मिले श्रीवास ठाकुर के घर में, कभी कभी चंद्रशेखर आचार्य के घर में भी किया करते थे। वैसे श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि साधारण जो अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, जो गृहमेधी होते हैं आत्मतत्व को नहीं जानते हैं, नहीं उनको कोई रुचि है इस चीज़ में, वो केवल भोग करना चाहते हैं और उनका जो चित्त है वो केवल गृह में और संसार में समाया हुआ रहता है, इसलिए उनको भगवत कथा में कोई रुचि नहीं है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। वो कहते हैं कि हे राजन, देखो रात में लोग क्या करते हैं, या तो सो जाते हैं या संभोग करते हैं, और दिन में क्या करते हैं, अर्थ 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 इहाय, केवल पैसे कमाने में लगे रहते हैं अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसंयेश असत्स्वपी, प्रमत्तो निधनम इव, अपने निधन को नहीं देखते हैं, अपने कुटुंब के सदस्यों को अपने सैनिक समझते हैं जिनकी रक्षा कर सकें। पश्यन्नपि न पश्यति निधनम, पश्यन्नपि न पश्यति, कि अपने निधन को नहीं देख रहे हैं जो बहुत निकट आने वाली है, और इस तरह से जीते हैं कि मानो उनको लग रहा है कि कभी मृत्यु आएगी ही नहीं। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो भौतिक संसार में भोग करना चाहता है उसको भूल जाना चाहिए कि मेरी मृत्यु कभी होगी, नहीं तो वो भोग नहीं कर पाएगा। यदि वो सोचेगा, जानेगा कि मैं इतना परिश्रम करूंगा वो सब छीन लिया जाएगा मृत्यु के समय, तो वो परिश्रम करने की प्रेरणा ही नहीं रह जाएगी उसके अंदर। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसको याद रखना चाहिए हर समय कि मेरी मृत्यु होगी, कभी भी होगी, इसलिए फिजूल समय गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी से रहना चाहिए, कृष्ण भजन करना चाहिए। फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्, कि हे राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, जो अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो भगवान श्री हरि, जो सबके आत्मा के आत्मा हैं, जो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, जो भगवान हैं, उनके बारे में वो सुने, बोले और स्मरण करे और उनकी उपासना करे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि हम हमारा समय ऐसे बिताएंगे तो फिर अवश्य हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् कुतो भयम् योगिनाम् नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, चाहे कोई एक ज्ञानी हो जो मोक्ष की अभिलाषा करता है, चाहे कोई योगी हो जो सिद्धियों की अभिलाषा करता है, चाहे कोई कर्मी हो जो कर्म के द्वारा कुछ सुख प्राप्त करना चाहता है, चाहे कोई भी क्यों न हो, हरेक को चाहिए कि वो हरि नाम का संकीर्तन करे। हरे नामानुकीर्तनम, ये सबके लिए आवश्यक है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति ही। कि हम जितने भी सारे कार्य करेंगे हे राजन इस दुनिया में, इन सब की परिपूर्णता क्या है? इन सब की परिपूर्णता इसमें है कि मृत्यु के समय हम श्री नारायण या श्री हरि या श्री कृष्ण का स्मरण करें। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं राम महाराज परीक्षित को। बात कहाँ शुरू होती है कि देखो मनुष्य कैसे अपना दिन और रात व्यर्थ में गंवाते हैं, जो मनुष्यों को करना चाहिए वो नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन का ध्येय इनको नहीं मालूम। अब चैतन्य महाप्रभु के जितने भी संगी थे वो सब परम विद्वान थे, एक से बढ़कर एक। वो शास्त्रों को जानते थे, मंत्रों को जानते थे, और वो भी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो वैष्णव थे कि मनुष्य जीवन का हर एक क्षण कितना मूल्यवान होता है। इसलिए वो इतनी आतुरता से, उत्साह से चैतन्य महाप्रभु के प्रस्ताव में हाँ में हाँ मिलाते रहे। और फिर संकीर्तन शुरू हुआ श्रीवास ठाकुर के घर में। और जब शुरू हुआ और लोगों को शहर में नवद्वीप में पता चला कि यहाँ बड़ा संकीर्तन का उत्सव रात को मनाया जा रहा है और हर रात को मनाया जाएगा, तो ये बहुत सारे लोग आ गए, बड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होने लगी। लेकिन सारे वैष्णवों ने दरवाजे बंद कर लिए, केवल जो समय पे आए वही अंदर आ सके, जो बाद में आए उनके लिए जगह ही नहीं था अंदर, वो नहीं आ सके। तो जो लोग बाहर थे, खास करके जो वैष्णव नहीं थे, वो हल्ला मचा रहे थे, हम भी कीर्तन में आना चाहते हैं, हम भी कीर्तन में शामिल होना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं अंदर क्या हो रहा है, बड़ा हल्ला बाहर मच रहा था। लेकिन यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे तो वो कीर्तन में इतने बह गए थे कि अपने शरीर का ज्ञान भी उनको नहीं था, तो बाहर क्या हल्ला मच रहा है इसका क्या ज्ञान होगा उनको, बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या चिल्ला रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं, बिल्कुल मग्न हो गए थे कृष्ण कीर्तन में। ऐसे कीर्तन करते करते कैसे रात बीत जाती थी उनको पता ही नहीं चलता था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कई रात बीत गए और उनको ऐसे लगा कि मनुष्य पृथ्वी लोक की एक रात बीत गई है। तो जब भगवान चाहते हैं तो ब्रह्मा जी के रात्रियों को भी एक रात में वो लगा सकते हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। रासलीला के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की एक रात बीत गई और गोपियों को लगा कि हमारे पृथ्वी लोक की एक रात केवल बीत गई है। तो चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते तो बहुत सुंदर दिखते थे और कभी कभी बड़े मधुर ढंग से करते और कभी कभी इतने उछल के करते कि सभी लोग देखते रह जाते। जब कीर्तन जोर जोर से अंदर होता तो बाहर आवाज़ें ज़्यादा नहीं आती, केवल बोल बोल हरि बोल कुछ ऐसे आ जाता आवाज़। तो जो नास्तिक लोग बाहर आते थे वो कहते ये क्या बोल बोल कह रहे हैं। फिर आपस मिलजुल के ये कीर्तनियों की निंदा करने लगे, क्योंकि उनको अंदर जाने के लिए अवसर नहीं मिला, न उनको छूट मिली अंदर जाने के लिए। क्योंकि जहाँ नाम संकीर्तन हो रहा है श्रद्धालु भक्तों के बीच में, वहाँ जब दूसरे लोग आते हैं सोचते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या समय बर्बाद करते हैं, क्या ऐसा नृत्य करते हैं, बहुत भावुक लोग हैं। तो ये नास्तिक लोग जो नवद्वीप के थे, जो बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित थे, वो सब कहने लगे अरे ये निमाय पंडित कितना अच्छा लड़का था पहले, अब पूरी तरह से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये बिगड़ गया है। और हाँ, दूसरे ने कहा जब से इनके पिता जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु हुई ना, तब से ये लड़का ऐसे हो गया है, और उनके पेट में कुछ गड़बड़ है, शायद इसके कारण से वो कुछ ऐसे कर रहा है। कोई कहने लगे कि ऐसे कोई ब्राह्मण के कार्य होते हैं क्या, ये लोग अंदर हैं, ना कोई जप का नाम लेता है, ना तप का नाम लेता है, ना कोई अध्ययन करते हैं, ना कुछ। अरे ब्राह्मणों को चाहिए वो अध्ययन करे, शास्त्रों का पाठ करे, और ये सब चीज़ों को छोड़ के ये लोग ऐसे सब कीर्तन करते हैं भावुक लोगों की तरह है। तो कोई कहने लगे अरे व्याकरण रोज जब तक आदमी नहीं पढ़ेगा तब तक एक महीने के अंदर व्याकरण के जितने सूत्र है वो भूल जाएगा। देखिए पहले ऐसे शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी कि बच्चा 5 या 6 साल की आयु में गुरुकुल में जाता था, हाथे खड़ी नाम का विद्यारंभ संस्कार जिसको कहते हैं। बच्चे को पहले एक अक्षर लिखाया जाता था उससे, और फिर उसकी विद्या शुरू हो जाती थी। तो 12 साल केवल व्याकरण के पढ़ाई में जाती थी, केवल व्याकरण जो अलग के अलग अलग सूत्र हैं, अक्षर आदि पाठ करने के बाद फिर व्याकरण के नियम, पाणिनि हो या कोई और भी हो। तो ये पढ़ते पढ़ते 12 साल, और उसके बाद भी फिर बार बार इसको याद रखना पड़ता था, क्योंकि इतने सारे सूत्र हुआ करते थे व्याकरण के। देखिए संस्कृत भाषा बहुत आगे बढ़ी हुई भाषा है, और इसके नियम जो है बहुत इतने विस्तार में हैं कि जब तक आदमी उनको बार बार याद नहीं करेगा वो भूल जाएगा। तो ये लोग बोल रहे थे कि ये तो व्याकरण का को पढ़ाता था, आज ये इतना संकीर्तन करते करते ऐसे भावुक हो गया है, तो ये व्याकरण भूल जाएगा। कोई कहने लगे दूसरे व्यक्ति कि अरे ये लोग अंदर जाके पता है क्या करते हैं, ये शराब आदि मांस आदि खाते हैं, ये लोग ऐसा सब करते हैं, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि हम सब जान नहीं पाए कि ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तरह तरह से निंदा करने लगे। कोई एक बेचारा व्यक्ति सामने आया, वो कहने लगा अरे ऐसे निंदा करने से क्या फ़ायदा, चलो चले अपने अपने घर में चले जाए, अपने काम देखो, उनको उसमें हमें उनके काम में हमें क्यों दखलंदाजी करनी है। और दूसरा व्यक्ति कहने लगा हाँ देखो हम तो इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि कीर्तन में हम शामिल हो सकें, लेकिन ये लोग कितने भाग्यशाली अंदर कीर्तन कर रहे हैं। तो सारे नास्तिक इन एक दो व्यक्तियों के ऊपर टूट पड़े, अरे तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बेकार की बातें करते हो, क्या भला कर रहे हैं ये लोग, अरे इनके कारण तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसे सब कह के वो एक के बाद एक के बाद एक निंदा करते। वृंदावन दास ठाकुर ये भी कहते कि जब थोड़े लोग आते थोड़ी देर निंदा करते फिर चले जाते, और थोड़े लोग आते वो भी निंदा करते चले जाते। ये दो नास्तिक मिलते वहाँ उनके द्वार के सामने, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर, और दोनों अट्टहास हो जाता उनको, बहुत जोर जोर से हंसते कि ये लोग कैसे मूर्ख हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई लोग हंसते नहीं, क्रोधित होकर निंदा करते कि ऐसे रात भर ये लोग ऐसे करते हैं, हमको नींद नहीं आती, हम सो नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ये नास्तिक लोग निंदा करते रहे, परंतु अंदर रहे भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने कीर्तन में इतने मस्त थे, इतने मग्न थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जब ऊपर उछलते कीर्तन करते हुए और ऐसे धड़ाम से गिर जाते नीचे जमीन के ऊपर कि सची माता ये दृश्य को सहन नहीं कर सके, और सारे भक्त लोग देख गए तो वो भी पुतली के समान खड़े हो गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि ऐसे भारी तरह से गिर रहे हैं महाप्रभु जमीन के ऊपर कि कहीं उनको कोई हानि ना पहुंचे, उनकी हड्डियां ना टूट जाएं। तो सची माता ने भगवान से तीव्र प्रार्थना की अपने मन में कि कृपया मुझे ये दृश्य देखने मत दीजिए, जब इस तरह से मेरा निमाई गिर जाता है, वो प्रेमावेश में ऐसे गिर जाता है, लेकिन कृपया ऐसे कीजिए कि मुझे पता नहीं चले इस बात का, कि यदि मैं देखूंगी या जानूंगी कि निमाई ऐसे गिर रहा है कीर्तन करके नृत्य करते हुए तो मैं इसको सहन नहीं कर पाएंगी, का पकड़ पाऊंगी। तो निमाई तो स्वयं अंतर्यामी है, तो वो जान गए कि अपनी माता शची देवी के हृदय में क्या बात चल रही थी, तो उन्होंने ऐसी कृपा की शची देवी के ऊपर कि उनके हृदय में विशेष कृष्ण कीर्तन का, कृष्ण प्रेम का रस प्रदान कर दिया, और जब भी महाप्रभु ऐसे गिर पड़ते तो शची देवी को बाह्य चेतना खत्म हो जाती, इतने भाव विभोर हो जाती वो अपने कृष्ण प्रेम के रस में कि उनको पता ही नहीं चलता था कि बाहर क्या चल रहा है। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु उठ जाते तो फिर से सची माता अपनी बाह्य चेतना को पुनः प्राप्त कर लेती। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता के ऊपर कृपा प्रदान कर दी। जो लक्षण महाप्रभु प्रकट कर रहे थे एक से एक ऐसे अद्भुत लक्षण थे, बड़े विस्तार में वृंदावन दास ठाकुर इनका वर्णन करते हैं, और जैसे है वैसे उन लक्षणों को दोहराना भी मुश्किल है और इसको समझना भी मुश्किल है। और ऐसे ऐसे लक्षण होते थे कि कभी कोई मनुष्य साधारण हो या असाधारण ऐसे नहीं कर सकता। कभी उनका शरीर इतना गर्म हो जाता कि चंदन भी लगाया जाता तो चंदन तुरंत सूख जाता, कभी उनके दांत हिलने लग जाते, कभी छोटे बच्चे की तरह वो चीखते, अपने घुटनों में चलने लगते, कभी उछल के इतने जोर से हुंकार करते, कभी जोर से उन्मत्त अवस्था जैसे वो हंसने लग जाते, कभी कभी प्रेम के आंसू उनके आंखों से ऐसे बहते मानो कि गंगा बह रही है उनकी आंखों से। ऐसे सब एक के बाद एक, एक के बाद एक उनके प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। कभी वो एक बार त्रिभंग सुंदर के रूप में खड़े रहे, जैसे श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हुए अपनी मुद्रा में खड़े रहते हैं, और ऐसे तीन घंटे चैतन्य महाप्रभु वहां पर खड़े रहे। तो ऐसे सारे लीलाएं करते रहे रात भर। और एक दिन हरिवासर था, हरिवासर एकादशी है, श्री हरि का दिन। तो ऐसे हरि के दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सूर्योदय के समय से ही शुरू किया कीर्तन, क्योंकि एकादशी के दिन में ऐसे बताया जाता है कि दिन भर और रात भर हमें कीर्तन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी भक्तों के साथ दिन भर कीर्तन किया। वैसे हमें एक नारद पंचरात्र से एक अच्छा श्लोक मिला जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। हमने भी पहली बार इस श्लोक को पढ़ा है, लेकिन अच्छा श्लोक है। संकीर्तना ध्वनिं श्रुत्वा ये चे नृत्यन्ति वैष्णवाः तेषां पाद रजस्पर्शात् सद्यपूत वसुंधरा। संकीर्तन ध्वनिं श्रुत्वा संकीर्तन के ध्वनि को सुन के ये चे नृत्यन्ति वैष्णवाः जो जो वैष्णव नृत्य करना शुरू करते हैं तेषां उनका पाद रज स्पर्शात, उनके चरणों के रज के स्पर्श से सद्य पूता वसुंधरा, ये पृथ्वी जो है वसुंधरा वो सदा पावन हो जाती है। दूसरे शब्दों में जब वैष्णव लोग कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं और नृत्य करते समय जब उनके चरणों का रज पृथ्वी माता के स्पर्श में आता है तो पृथ्वी माता पावन हो जाती है, वो सोचती है मेरा जीवन धन्य हो गया। वैसे सभ्य वैदिक सभ्यता के अनुसार हमें हर दिन सुबह उठने के बाद जमीन पर पैर रखने के पहले पृथ्वी माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमस्व माम, क्षमा कर दीजिए हे पृथ्वी देवी, समुद्रे वसने देवी, पर्वत स्तन मंडलम, कि हे पृथ्वी माता, जिनकी कपड़े वस्त्र जो हैं वो ये समुद्र हैं, जिनके शरीर ये सब पर्वत है, अभी मैं आपके ऊपर मेरे पैर डाल रहा हूँ, क्षमस्व माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि पृथ्वी माता ये कौन है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि आप विष्णु पत्नी हैं, आप कोई साधारण महिला नहीं है। आपको पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वरह रूप स्वीकार किया था तो उस समय अपने दंष्ट के स्पर्श मात्र से पृथ्वी माता के द्वारा नरकासुर का जन्म करवाया था। ये नरकासुर भी असुर बन गया भगवान का पुत्र होने के बाद भी, ये दूसरी बात है, विचित्र बात है, लेकिन होता है कभी कभी असुर का बेटा भक्त बन जाता है, कभी भक्त का बेटा असुर बन जाता है, कभी असुर का बेटा असुर बनता है, कभी भक्त का बेटा भक्त बनता है, सब भगवान की योजना से होता है। तो ये विष्णु पृथ्वी माता विष्णु पत्नी हैं, तो उनके ऊपर चरण हमारे पैर डालने के पहले हमें बहुत सोचना चाहिए कि हम भगवान की पत्नी के ऊपर पैर डाल रहे हैं, लेकिन उसके बिना रह तो नहीं सकते, क्या करेंगे, चलना तो है ना, चले बिना कैसे रह सकते हैं, वो तो सिद्ध लोग की शक्तियां तो हमारे पास नहीं कि उड़ के हम जाएंगे। जब रामानुजाचार्य पहली बार तिरुपति गए थे, तिरुमला शेषाद्री, वो पर्वत शेष का एक अवतार माना जाता है, अनंत शेष का, तो रामानुजाचार्य वहाँ अपने घुटनों में चले गए, वो सोचा कि मेरे पैर शेष के ऊपर रखना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे लिए उपाय नहीं है, चलना तो है ही, इसलिए क्षमा याचना करते हैं। परंतु वही पृथ्वी माता जिनके ऊपर पापी लोगों के रहने से जो झूठ बोलते हैं, जो आभारी नहीं हैं, ऐसे लोगों के बोझ से जब पृथ्वी माता बहुत विचलित हो जाती हैं, वही पृथ्वी माता जब वैष्णवों के कीर्तन करते समय, नृत्य करते समय रज की धूलि को स्वीकार करती, उनको बहुत बड़ा आनंद आता है और वो पावन हो जाती है। तो वही श्री कृष्ण जिनके पवित्र नामों को सुनकर शिवजी के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं और अपने डमरू बजाकर वो बड़े नृत्य करते हैं भाव विभोर होकर, वही श्री कृष्ण आज स्वयं एक भक्त के रूप में नृत्य कर रहे हैं। वही श्री कृष्ण जिनके पवित्र नामों का गान करते हुए शुकदेव और नारद जैसे महामुनि इधर उधर भ्रमण करते हैं, वही श्री कृष्ण आज एक भक्त बन के नृत्य कर रहे हैं। वही भगवान श्री कृष्ण जिनके पवित्र नामों के उच्चारण मात्र से वाल्मीकि मुनि का जीवन धन्य हो गया, उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, वही भगवान आज भक्त बन के नृत्य कर रहे हैं। वही भगवान श्री कृष्ण जिनके नामों के आभास मात्र लेने से अजामिल जैसे व्यक्ति को मुक्ति मिल गई नरक लोक से स्वाभाविक रूप से, वही श्री कृष्ण आज भक्त बन के यहाँ नृत्य कर रहे हैं। और जिनके पवित्र नामों का कीर्तन करने से साधारण व्यक्ति भी जो भव बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण आज यहाँ पे पृथ्वी लोक में आके एक भक्त की भूमिका स्वीकार कर रहे हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं। वही अपने ही नामों का उच्चारण करते हुए इन नामों के रस का स्वाद ले रहे हैं और हम सबको सिखला रहे हैं कि कैसे हरि नाम लेना चाहिए। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, उनके गले में तो वैजयंती माला वगैरह थी, फिर कहते हैं कि वो माला तो टूट गई, गिर पड़ी कीर्तन नृत्य करते हुए, तो कहाँ गया वो गरुड़ पर बैठने का आनंद। जब भगवान विष्णु के रूप में होते हैं तो गरुड़ पर सवार होके आते हैं ना, तो कहाँ गया वो गरुड़ पर बैठने का आनंद। अब यहाँ भक्त बन के नृत्य कर रहे हैं, कहाँ गया वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने की ठाठ। अब शंकर गदा पद्म छोड़ के अभी वो भक्त बन के नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि कहाँ गया उनका वैकुंठ का वास, कहाँ गया उनके प्रेम से रमा देवी लक्ष्मी देवी के चरणों का दर्शन करना, कहाँ गया वो आनंद। आज वही भगवान आनंद किस चीज में ले रहे हैं, उनके ही पवित्र नामों का उच्चारण करने में ले रहे हैं। आज इनका आनंद बदल गया है। वैसे अपने स्वरूप में जब भगवान स्थित होते हैं तो ऐसे तरह तरह से दिव्य आनंद लेते हैं, लेकिन आज वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं देखो भगवान का आनंद किस प्रकार का आनंद है। भगवत्ता को त्याग के अब दासत्व को उन्होंने स्वीकार किया है और अपने ही दास के रूप में आके वो अपने ही नामों का उच्च स्वरों में कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कलिम सभा जयंत आर्या, कि जो आर्य लोग हैं, जो बहुत ही सज्जन हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, वो इस कलयुग की उपासना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके क्या गुण हैं। गुण ज्ञा सार भागिनः, ये लोग आर्य क्या करते हैं, गुण ज्ञा है, इस कलयुग के गुण को जानते हैं। सार भागिनः, इस कलयुग का सार क्या है वो इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो भी लभ्यते, वो जानते हैं कि ये कलयुग का सार है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन करने से सर्वस्वार्थो भी लभ्यते, सारे अच्छे चीजें प्राप्त हो जाएंगी, जीवन का ध्येय संपूर्ण प्राप्त हो जाएगा केवल संकीर्तन मात्र करने से। इसलिए हालांकि इस कलयुग में इतने सारे दोष हैं, हम कलयुग की निंदा हमेशा करते हैं ना, यहां तक कि जो भक्त भी नहीं हैं वो भी ऐसा बीच बीच में बोलेंगे, अखबार पढ़ते हैं अरे कलयुग है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, एक आदत हो जाती है ऐसा, देखो क्या क्या खबर है कलयुग है। तो साधारण आदमी भी जानता है कि कलयुग है, कलयुग के कितने दुर्गुण हैं। प्राय कोई अच्छी चीज सुनने में नहीं आती है कलयुग में, अखबार खुल के तो देखिए, मत देखिए लेकिन जानिए, हाँ खोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि और बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो कलयुग में इतने सारे दोष होने के बाद भी ये पूजनीय हैं। किनके द्वारा पूजित है कलयुग? महान संतों के द्वारा। साधारण आदमी तो कलयुग को कोसता है, दोष देता है, अरे कलयुग है, कितना बेकार है, कितने दुर्गुण हैं कलयुग में, केवल दुर्घटनाएं होती हैं, सुनामी और भूकंप होते हैं। अवश्य ये सत्य है, परंतु जो गुणज्ञाः सार भागिनः आर्य लोग हैं, जो हर चीज के गुण को पहचानने में विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसे लोग कलयुग की निंदा नहीं करते, कलयुग की पूजा करते हैं, कलौ सभाजयन्त्यार्य गुणज्ञः सारभागिनः। क्योंकि वो जानते हैं कि केवल संकीर्तन से, यत्र संकीर्तन संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽपि लभ्यते, केवल संकीर्तन करने से इस कलयुग में सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। कितनी बड़ी चीज है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक बहुत जोर देते हैं कि संत जो हैं वो जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी जानते थे कि अभी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होने वाले हैं, इसलिए ये श्लोक कहा गया है यहाँ श्रीमद् भागवत में। कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम भजेत। कि कलयुग हे राजन ये दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन, जिससे सारे भौतिक आसक्तियों से हम मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हो सकते हैं। सुशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने इन श्लोकों का उच्चारण इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि अब आने वाले युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे और ऐसे घृणित युग को, ऐसे पतित समय को और ऐसे पतित लोगों को वो सबसे ऊंची भेंट प्रदान करेंगे। देखिए भगवान की कृपा की कल्पना कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए। सत्य त्रेता और द्वापर में भगवान के अनेक अवतार आए और अधिकतर ये ऐसे अवतार थे जैसे नरसिंह देव, वामन देव इत्यादि, कि जिनके भक्त केवल वैकुंठ लोकों को प्राप्त कर सके लेकिन गोलोक वृंदावन को नहीं प्राप्त कर सके। यद्यपि सत्य त्रेता और द्वापर के लोग इतने योग्य थे, इतने सभ्य थे, इतने आर्य थे, इतने तपस्वी थे, फिर भी केवल वैकुंठ की प्राप्ति हो चुकी उनको, गोलोक वृंदावन की नहीं। और कलयुग के लोग कितने पतित, कितने पापी, कितने अयोग्य, हर दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आयु की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, तपस्या की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, फिर भी उनको ऐसे एक अवसर मिला है कि मुफ्त में बिना कुछ तपस्या किए हुए, बिना योग्य हुए हुए वो गोलोक वृंदावन जा सकते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करके। इसलिए ये कलयुग पूजनीय है। सत्ययुग में जन्म लेते तो वैकुंठ हम चले जा सकते थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अब हम कलयुग में जन्म लिया है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो इसलिए धन्य है ये कलयुग। हमारे दृष्टिकोण का सवाल है, किस दृष्टि से हम देखते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनको इस संकीर्तन के आंदोलन में आना चाहिए। इसलिए और एक बार बताया गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेध सह। कि जो सुमेध हैं, जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवान कृष्ण के उस अवतार की उपासना करेंगे जो कृष्ण कृष्ण कह के प्रकट हुए हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, और जिनकी शरीर की कांति अकृष्ण है, जो सांवलन नहीं है बल्कि जिनका स्वर्ण रंग है, जो अपने पार्षदों के संग में प्रकट हुए हैं और उनका अस्त्र है हरि नाम, और ये संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं, तो कलयुग के जो बुद्धिमान लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के इस अवतार की उपासना करेंगे, जिससे कि शीघ्र ही हरि नाम के उच्चारण के द्वारा वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे हमारे वैष्णव आचार्यों ने व्याख्या की है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कि कृपा की महिमा का अनुमान हम कैसे लगाएं, कैसे इस चीज को समझें। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे लीला करते रहे, नृत्य आदि करते रहे, और एक बार वो जाके विष्णु के सिंहासन पर बैठ के जहाँ शालिग्राम को उठाए और वहाँ आसन पर बैठ गए। और आसन टूटने को आया उस समय, क्योंकि वो तो शालिग्राम शिला का आसन था, एक व्यक्ति के लिए तो आसन नहीं था, मतलब एक मनुष्य के लिए आसन नहीं था। तो जब वो टूटने को आया तो नित्यानंद प्रभु ने जाके वो आसन को पकड़ लिया। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मानो भगवान अपने अनंत शयन पर अभी विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी हैं, और बलराम जी से ही संकर्षण आते हैं, संकर्षण से अनंत शेष आते हैं, जो इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और जो भगवान विष्णु की शैया बन जाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु लीला करते रहे, और फिर एक दिन वो ऐसे भाव में आ गए कि एक सात प्रहरीय महाभाव या महाप्रकाश लीला उन्होंने प्रकट की। और ये क्या चीज है, यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको कल शाम आना है, आठ प्रहरों के बाद, या सात आठ प्रहर के बाद, एक प्रहर मतलब तीन घंटे, या सात प्रहर कह दीजिए, तो सात प्रहर बाद आप यहाँ आएंगे तो सात प्रहरीय लीला महाप्रभु की आप सुन पाएंगे। तो हम एक भजन गाएंगे, यदि उसके पहले आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, माइक है क्या?
हरे कृष्ण महाराज जी।
हरे कृष्ण।
हम ईश्वरपुरी जी को मतलब मायावादी समझते हैं?
नहीं, ईश्वरपुरी मायावादी नहीं है, वो केशव भारती महाराज थे जिन्होंने महाप्रभु को संन्यास दिया। उन्होंने मायावादी संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा ली थी भारतीय संप्रदाय में। ईश्वरपुरी नहीं, ईश्वरपुरी तो परम वैष्णव थे, वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और माधवेंद्रपुरी भी परम वैष्णव थे, परंतु ईश्वरपुरी के एक गुरु भाई थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, वो थोड़ा सा हृदय में मायावाद से प्रभावित हुए थे।
संन्यास लिए वो
वो मायावादी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, वास्तव में मायावादी नहीं थे, क्योंकि वो अक्रूर के अवतार हैं, अक्रूर के रूप हैं, वो अक्रूर ही हैं साक्षात। प्रश्न ये है कि महाराज परीक्षित ने जब उपवास करने का निर्णय लिया तो सारे ब्रह्मांड में ये खबर कैसे फैली? आजकल कैसे फैलती है, मोबाइल, टेलीफोन और तरह तरह की चीज़ें हैं, तो आज कलयुग में बात फैल सकती है तो द्वापर में क्यों नहीं फैल सकती? वहाँ जो तकनीकी ज्ञान था वो बहुत सूक्ष्म था, केवल मानसिक, केवल विचार करने मात्र से खबर एक व्यक्ति दूसरे को से संबंध रख सकता था। आजकल हमें टेलीफोन उठा के बहुत जोर से बोलना पड़ता है और कानों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कान खराब हो जाते हैं मोबाइल फोन से, लेकिन कलयुग में उस द्वापर त्रेता सत्य में ऐसे कोई समस्या नहीं थी। जैसे लोग ऊपरी लोक से आते थे, आकाश पथ से होकर आते थे, उनको कोई विमान की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ी। जितने भी संत महर्षि महरलोक जनलोक तपलोक से आए, वो सब केवल यूं ही चले आए, आकाश पथ से होते हुए चले आए। तो उसी प्रकार से खबर भी फैल गई। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से ज़्यादा आनंद कैसे पाते हैं? क्योंकि भक्त सेवा करते हैं, इसलिए सेवा करने में ज़्यादा आनंद है और सेवा स्वीकार करने में उतना आनंद नहीं है। इस दुनिया के लोग इस तथ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए सभी लोग सोचते हैं कि सब मेरी सेवा होनी चाहिए, परंतु वो नहीं जानते कि भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है। हरे कृष्ण।
महाप्रभु की लीला से तो पता चलता है कि कहीं पर भी वो नाम संकीर्तन या नाम के लिए कलयुग के उद्धार के लिए इतना, अपनी लीला से पता चलता है कि नाम संकीर्तन ही इतना महत्वपूर्ण है, तो क्यों हम फिर अलग अलग विधियों को अपनाते हैं और नाम संकीर्तन को द्वितीय स्थान देते हैं?
दूसरा स्थान नहीं देते हैं, दूसरे कार्य इसलिए करते हैं कि हरि नाम हम 24 घंटे बैठ के नहीं कर सकते, वो रस हमें नहीं है। यदि कर सकते तो बस वही करना चाहिए, बैठ के 24 घंटे हरि नाम लेते रहना है, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छास लेना है, कभी कभी वो भी भूल जाना है, 1 घंटा सोना है, कभी कभी वो भी भूल जाना है। हाँ, कर सकते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कर सकते हैं, उनकी नकल नहीं कर सकते। हरि नाम ही सब कुछ है, परंतु हरि नाम में उतनी श्रद्धा हमारी नहीं है, नहीं उतना हरि नाम लेने में रस है, इसलिए हमारी इंद्रियों को किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना आवश्यक है, ताकि वो कोई संसार के इंद्रिय और संसार के भोग के कार्य में न चले जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि कोई अच्छी तरह से योग्य है भी हरि नाम लेने के लिए, तो वो श्रवण कीर्तन करेगा, लेकिन इस हरि नाम को फैलाने के लिए भी जाएगा, उसके हृदय में ऐसी करुणा की भावना जागृत हो जाएगी सारे जगत के पतित लोगों के प्रति कि वो अवश्य बाहर जाके प्रचार करेगा, कृष्ण नाम फैलाएगा। नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नाम में रुचि उत्पन्न करना उतना काफी नहीं है, बात वहां समाप्त नहीं होती है। नामे रुचि जीवे दया, पतित जीवों के ऊपर दया करना, कैसे, नाम संकीर्तन करके, तो उनके पास भी नाम को ले जाना है, उनके हृदय में हरि नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करानी है, तो ये हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था जो है, इसका उद्देश्य यही है कि अंततः श्री कृष्ण के पवित्र नामों में सबकी रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, हरे कृष्ण।
तो चैतन्य महाप्रभु गया जाने के पहले भगवान ही थे और बाद में भी वो भगवान ही थे, लेकिन वो पहले चैतन्य महाप्रभु को देख के भाग क्यों जाते थे?
क्योंकि उन्होंने अपने भक्ति की लीला प्रकट नहीं की थी, केवल विद्या का रस प्रकट किया था। उन्होंने ऐसी भूमिका उस समय निभा रहे थे कि मानो वो एक शुष्क ज्ञानी हैं, एक तार्किक हैं, जो केवल व्याकरण आदि के ऊपर तर्क करने के इच्छुक हैं, ये लीला निभा रहे थे उस समय। और उस समय भक्तों को पता नहीं था कि ये साक्षात श्री कृष्ण है, और वो अब तर्क नहीं करना चाहते थे व्याकरण आदि विषयों के ऊपर, इसलिए सोचते थे कि दूर रहना ही ठीक है। देवता लोग पांव नहीं रखते हैं, हाँ, क्योंकि वो ऊपर लोक से आते हैं, वो हमारे जैसे स्थूल शरीर उनका नहीं है, इसलिए पृथ्वी लोक पर आते हैं तो 6 इंच ऊपर ही चलते हैं। तो जब नाम संकीर्तन आदि होता है, भगवान की कथा होती है, तो कभी कभी वो आते हैं, तो उनको पहचाना जा सकता है। तो देखिए आपके बाजू में कोई बैठे हैं, 6 इंच के ऊपर तो नहीं बैठा है ना, देखिए कौन कौन है, अपने बाएं दाएं और जरा देखिए आप। जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, ये बात हमने कही नहीं, श्रीवास ठाकुर के घर में, तो उनके चरण कमल हमेशा पृथ्वी के ऊपर ही रहा करते थे, लेकिन कोई भक्त इसको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ठीक है, ये क्या समझ नहीं पाए? हर काम में लोग या तो धर्म को सस्ता लेते हैं या फिर धर्म को जानते हुए भी पालन नहीं करते हैं, तो इसे हम कैसे समझें? हाँ, ये अज्ञान के कारण है, लेकिन जो जानते हुए भी नहीं करता है उसको दंड अधिक मिलता है। इसलिए भक्ति में आने के बाद अब और कुछ नहीं करना चाहिए, तो भगवान की लाठी रहेगी। जिनको नहीं पता है उनको तो दंड मिलेगा ही, इसलिए भारतवर्ष के लोगों को दंड ज़्यादा मिलता है, क्योंकि भारतवर्ष पुण्य भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ पे जिनका जन्म होता है भगवान की भक्ति करने के लिए होता है, न कि केवल दूसरा कुछ भौतिक कार्य करते रहें। और यदि भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो दंडित होंगे ही। भक्ति करने के बाद भी हमें क्यों कभी कभी रुचि नहीं होती, क्या दुख क्यों भोगना पड़ता है? अच्छा, क्योंकि ये भगवान की कृपा है हमें और तीव्रता से भक्ति करने के लिए प्रेरित करने के लिए। यदि संसार में दुख नहीं होता तो भगवान के पास कौन जाता? हर एक व्यक्ति सोचता है जगत ही सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, इसलिए भगवान बड़ी कृपा करके यहाँ दुख देते हैं। तो ये दुख दुख नहीं है, ये भगवान की कृपा है। हम वैकुंठ के रस और गोलोक वृंदावन के रस में भेद कैसे कर सकते हैं जबकि दोनों परम स्तर पर स्थित हैं? क्योंकि वैकुंठ के रस में भक्त भगवान को भगवान मानता है और एक ऐश्वर्य की भावना रहती है भगवान के प्रति। दूसरी ओर गोलोक वृंदावन में जो भक्त हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो भगवान को अपना मित्र, अपना पुत्र, अपना प्रेमी आदि समझ के उनकी सेवा करते हैं। तो ये अंतर है। यह प्रश्न है कि गोलोक वृंदावन में जाने के बाद भी क्या व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा? अवश्य क्यों नहीं, भक्ति अनंत है, भक्ति की कोई सीमा नहीं है, कृष्ण प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना भी कृष्ण प्रेम हो, कोई इतना नहीं कह सकता कि मैं कृष्ण प्रेम की सीमा तक पहुंच गया, क्योंकि भगवान अनंत है तो उनकी भक्ति भी अनंत है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, ये है भक्ति। अच्छा, तो खैर भजन के लिए समय नहीं है। कृपया जब प्रश्न लिखेंगे तो आप स्पष्ट जरा लिखिए, ठीक है, अच्छी तरह से लिखिए स्पष्ट। हरे कृष्ण। हाँ
जी, कुछ भक्त यहाँ बाहर भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ भारत देश में क्यों जन्म लेते हैं?
नहीं, सिर्फ भारत देश में नहीं जन्म लेते हैं, दूसरे जगह भी प्रकट हुए। जब वामन देव के बन के बस स्वर्ग लोक में प्रकट होते हैं, अन्य देशों में भी प्रकट होते हैं, परंतु जो ऐतिहासिक वर्णन है वो अधिकतर यहाँ के हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये कितना पावन जगह है, ये स्थान है, इसलिए इसे पावन भूमि कहते हैं, पुण्य भूमि कहते हैं। जैसे राजा राजधानी में ज़्यादा क्यों रहता है ना, तो राजधानी विशेष स्थान है, कोई स्थान को वो चुनते हैं कि इस स्थान में हम ज़्यादा रहेंगे। तो भगवान के लिए भारतवर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और वैसे भी देखा जाए तो भारतवर्ष केवल आजकल में सब भारत जाना जाता है वो उतना ही नहीं है, सारा पृथ्वी भी भारतवर्ष माना जाता था पहले।
श्रद्धालु होते हुए भी उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो वो आज इतना तकलीफ में उठा रहे
हैं? मतलब भारत के लोग, जापानी लोग, अच्छा अच्छा, जापानी लोग इतने श्रद्धालु होते हुए भी ऐसे कौन से पाप किए हैं कि उनको ऐसे दुर्घटना उनके जीवन में हुई? देखिए, ये दुनिया में कौन पापों से मुक्त है? कोई नहीं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि हम तो नहीं जान सकते किसने कैसे पाप कब किए थे, क्या किए थे। आज जापान में हुआ, हो सकता है कल बेलगाम में हो, किसे पता क्या होना है। तो इसका मतलब है पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। यहां भौतिक जगत में हर पद में विपद है। ज्यादा कृपालु कौन है, श्रीमती राधा रानी या श्री बलराम जी? आप पूछ के देख सकते हैं, दोनों में आप देखिए, दोनों ही अपनी जगह में बड़े कृपालु हैं। अंतिम प्रश्न, फिर अभी दर्शन होगा। क्या तो कल शाम को हम फिर से मिलेंगे और कथा करेंगे। अब दर्शन खुलने वाला है तो थोड़ा कीर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ पर आए। और शाम को हरे कृष्णा।